समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिसका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है आज उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी डालेंगे नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी कार्यक्रम के आखिरी भाग में हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्मदिवस। और आज परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, और विशाल आपको भी नमस्कार। एंड डियर लिसनर्स, यू आर ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1। आई एम रेनू कटारिया एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट विशाल शर्मा। और जैसे कि विशाल ने आप सबको बता ही दिया है हमारे पास क्या क्या आज हमारे प्रोग्राम में होगा, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो होने वाली है वो होगी हमारी डेट लाइन सेगमेंट एंड ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट विशाल।
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से बातचीत की, कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू एड्रेस द नेशन टुडे ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवाओं के 942 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
नेशनल वोटर्स डे बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री टुडे।
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी।
एंड इन क्रिकेट, इंडिया टू टेक ऑन इंग्लैंड इन सेकेंड T20 इंटरनेशनल इन चेन्नई दिस इवनिंग। And now, dear listeners, time to take you all to our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today, we will talk about National Voters Day या राष्ट्रीय मतदाता दिवस. But before we begin, Vishal, मैं थोड़ा सा दो लाइन what Martin Luther King Jr. said on democracy and rather on voters and उनके बारे में दो लाइन पढ़ना चाहती हूँ। Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. And the 15th National Voters Day is being celebrated across the country today. This special day comes shortly after the recently concluded historic 2024 Lok Sabha elections, which is the world's largest democratic exercise. And the Election Commission is also celebrating its 75 years of service this year. Isn't that incredible, Vishal? Itna sab kuch aaj hi ke din ho raha hai.
Ji, bilkul sahi kaha aapne, Renu. Vote ki taakat ko samajhna hoga. Ye desh ke liye ek vardaan hai. एक एक मत या कहें वोट का महत्व है और यही लोकतंत्र की शान भी है
जी।
चुनाव आयोग हमारी पूरी चुनावी प्रणाली की एक रीढ़ है और इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी उससे ठीक एक दिन पहले जब भारत गणराज्य बना। ये वही संस्था है जिसने स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव से लेकर आज तक हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया है। आज का दिन इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिन प्रत्येक भारतीय और प्रत्येक मतदाता को समर्पित है। 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक नागरिक के रूप में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है और वो है मतदान।
एब्सोल्युटली, द नेशनल वोटर्स डे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2011 विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रीइंफोर्सिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी सिटीजन्स राइट टू वोट एंड टू मोटिवेट एंड एनकरेज न्यू एलिजिबल वोटर्स टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। दिस डे सर्व्स एज एन एनुअल रिमाइंडर ऑफ द पावर ऑफ द बैलेट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद इट। एंड इफ वी टर्न आवर अटेंशन टू इंडियाज इनॉग्युरल general election, Vishal, which took place in 1951 and 52, where approximately 17 crore voters were registered and who took part in this landmark event. And the first election marked a significant step in India's journey as a democratic nation, setting the stage for future elections and continued civic engagement.
ये वास्तव में अद्भुत है। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव, जैसा कि अब चौधरी रेनू ने बताया 1951-52 में कराया गया। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व क्षण था जिसमें लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। ये चुनाव हमारे लोकतंत्र की नींव के रूप में स्थापित हुआ जिसने भारतीय नागरिकों को पहली बार सीधे तौर पर अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया। यदि आज हम इस यात्रा पर नजर डालें तो हमारे चुनावी डेटाबेस में लगभग 99 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल हैं और देश जल्द ही 1 अरब से अधिक मतदाताओं का एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। मतदाताओं की संख्या में ये वृद्धि हमारे लोकतंत्र की ताकत और उसके विकास को दर्शाती है। इस अद्वितीय यात्रा ने हमें दिखाया है कि समय के साथ हम कितना आगे बढ़ चुके हैं और ये भी कि लोकतंत्र में हर नागरिक की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल विशाल, एंड टुडे द वोटर्स ऑफ इंडिया स्टैंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक फोर्स इन द वर्ल्ड। और जहां हम नागरिकों की और यंग वोटर्स की बात करते हैं तो देयर आर 21.7 करोड़ इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 29 हु आर एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू शेपिंग द फ्यूचर ऑफ आर डेमोक्रेसी। और इससे अच्छी बात इंडिया के लिए और भारत के लिए क्या हो सकती है कि सबसे ज्यादा जो यंग वोटर्स हैं वो हमारी कंट्री में हैं। And these young citizens are not just participating in the electoral process, they are infusing fresh energy, ideas and perspectives, playing a crucial role in guiding the nation towards new avenues. Their involvement reflects a dynamic shift in the political landscape, ensuring that our democracy remains vibrant, progressive and responsive to the aspirations of the younger generation.
Renu, aapne yuva matdataon ki badhti bhumika ki baat ki, महिला मतदाताओं की भी अगर बात करें तो लगातार इनकी बढ़ती संख्या 2024 में पुरुष और महिला मतदाता अनुपात 948 से बढ़कर इस वर्ष 954 हो गया। ये महिला मतदाताओं की भागीदारी में एक महत्वपूर्ण सुधार को दिखाता है। ये आंकड़ा केवल संख्याओं का ही नहीं है बल्कि हमारे लोकतंत्र की समावेशिता और समानता की दिशा में किए गए प्रयासों का भी एक जीता जागता प्रमाण है।
बिल्कुल है जी।
अब महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है और वे पहले से कहीं अधिक सक्रिय रूप से चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रही हैं। ये हमारे समाज में महिलाओं के अधिकारों और अवसरों को लेकर जागरूकता का परिणाम है। ये बदलाव हमारे लोकतंत्र की मजबूती और उसकी व्यापकता को दर्शाता है जहां हर नागरिक चाहे वो महिला हो या पुरुष समान रूप से अपनी आवाज उठा सकता है और अपने अधिकारों का उपयोग भी कर सकता है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति हर मतदाता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर कहें तो लोकतंत्र की ताकत जनता की भागीदारी में छिपी है।
वेरी ब्यूटिफुली सेड विशाल, इट एकोज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। कहते हैं द पावर ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द हैंड्स ऑफ इट्स वोटर्स। एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाई वोटिंग मैटर्स सो मच। वोटिंग इज नॉट जस्ट अ राइट, इट इज अ ड्यूटी। एज इब्राहिम लिंकन वंस सेड, द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। दिस ईयर्स नेशनल वोटर्स डे थीम, Nothing like voting, I vote for sure, emphasizes the importance of participation.
जी, इस साल का जो विषय है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का वो यही संदेश देता है कि हमें गर्व के साथ अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। ये न केवल हमारा अधिकार है बल्कि देश के प्रति एक परम कर्तव्य भी है। पहले लोग मतदान के प्रति इतने जागरूक नहीं थे लेकिन निर्वाचन आयोग की मेहनत और प्रयासों की वजह से आज हर चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है और ये एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र की पहली पहचान है।
बिल्कुल, एंड इफ वी टॉक अबाउट वोटिंग, अगर हम अपने एक एक वोट के बारे में बात करते हैं, बाय कास्टिंग आवर वोट वी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन नेशन बिल्डिंग। एज फार एज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इज कंसर्न, वी कैन नॉट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वन वोट। देर आर मेनी इंसिडेंट्स विशाल, हम जानते भी हैं, इन हिस्ट्री वेर अ सिंगल वोट चेंज द डिसीजन। और शायद आप जानते ही हैं कि 1845 में एक वोट, जिसके बारे में शायद आप हमें ज्यादा अच्छी जानकारी
जी,
दे सकते हैं।
हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। 1845 में मात्र एक वोट ने टेक्सास को संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल किया था और भारत में भी हर एक वोट हमारे लोकतंत्र के भविष्य को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
एंड आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट अ फ्यू एग्जांपल्स, क्यों ना हम एक दो एग्जांपल्स अपने लिसनर्स को बता दें कि कैसे एक वोट जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और कैसे हमारा इलेक्शन कमीशन कोशिश करता है कि हम कहीं से भी जो एक भी वोटर है उससे हम उसका वोट डलवाने में पूरी अपनी तरह अपने आप को सक्षम करें।
और कितने जो द्रोह जो स्थान होते हैं जहां पर पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है, निर्वाचन आयोग कितने प्रयास करता है, कितने लोगों की टीम पहुंचती है और किस किस तरीके से किन किन बाधाओं और डिफिकल्ट टेरेन को पार करती हुई पहुंचती है केवल एक मतदाता का वोट लेने के लिए. ये हमारे लोकतंत्र की सच्ची ताकत है और खूबसूरती भी है.
बिल्कुल. एंड यू नो विद लिसनिंग टू ऑल दीज इंस्पायरिंग स्टोरीज जो कि इलेक्शन कमीशन इतना सब कुछ करता है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू टेल एंड रिक्वेस्ट आर लिसनर्स दैट प्लीज कास्ट योर वोट फॉर द दिल्ली असेंबली इलेक्शन ऑन द 5th of February 2025. क्यों नहीं हम दिल्ली में रहते हुए अपने वोट का पूरे अच्छे तरीके से उसका उपयोग करें, क्योंकि आपने सुना है अभी हमने जैसे बताया कि इलेक्शन कमीशन एक एक आदमी के वोट के लिए कितनी दूर ट्रैक करके जाते हैं और नदियां पार करते हैं, तो क्या हम दिल्ली में रहते हुए अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते?
जी रेनू, आपने वोट के महत्व की बात की, एक एक वोट के महत्व की बात की और एक कुछ उदाहरणों की भी बात की. उस उदाहरण का अगर मैं यहां देना चाहूं तो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे हिमाचल राज्य के शिक्षक श्याम शरण नेगी और भारत के पहले आम चुनाव के दौरान वोट करने वाले पहले व्यक्ति बने थे. श्याम शरण नेगी ने 1951 में हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में मतदान किया था और सर्दी के कारण यहां मतदान बाकी देश से 5 महीने पहले हुआ था और इन्होंने अपने जीवन के हर चुनाव में वोट किया. 1951 से लेकर 2022 तक इन्होंने 16 लोकसभा और 14 विधानसभा चुनावों में अपना वोट दिया. इतना ही नहीं, पंचायत चुनावों में भी ये वोट देने जाते थे. 2022 में इन्होंने अपना अंतिम वोट हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में डाला और उसके सिर्फ 3 दिन बाद इनका निधन हो गया. लोकतंत्र की इस बुनियादी जिम्मेदारी में उनका योगदान हम सभी के लिए एक बेहतरीन मिसाल है.
विशाल, दीज आर वेरी ट्रूली इंस्पायरिंग स्टोरीज विच टीच अस दैट नो सर्कमस्टेंसेस कैन टेक अस अवे फ्रॉम आवर राइट्स एंड ड्यूटीज. और हम थोड़ा सा यहाँ पे लेट्स डेल्व इनटू द स्वीप प्रोग्राम विच स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन. इट इज द इलेक्शन कमीशन्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव डिजाइन टू इंक्रीज वोटर अवेयरनेस and encourage active participation in the electoral process.
जी, स्वीप के अंतर्गत कई प्रकार की गतिविधियां और मीडिया कैंपेन चलाए जाते हैं जो राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं. ये कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी उम्र, लिंग, जाति या धर्म से हो, चुनावों के और मतदान के महत्व को समझे और सक्रिय रूप से उसमें भाग ले.
Now you're telling our listeners that your vote shapes the future. Let us end Vishal with a beautiful quote by Mahatma Gandhi. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others, and voting is one of the greatest services you can do for your country.
Ji, matdan sirf ek adhikar nahi, ek zimmedari bhi hai. Desh ka bhavishya aapke haathon mein hai. और अब चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि आज उनके पास क्या विशेष है.
यस, लेट्स गो टू जम्मू फर्स्ट. विशाल, इन जम्मू एंड कश्मीर, अहेड ऑफ स्टार्टिंग द रेल सर्विसेज टू कश्मीर, नदन रेलवेज ऑन जनवरी 19 कंडक्टेड अ फाइनल ट्रेन ट्रायल रन फ्रॉम कटरा रेलवे स्टेशन ऑफ जम्मू टू बडगाम रेलवे स्टेशन इन कश्मीर. The trial train comprising 22 bogies, included 2 luggage bogies and 2 engines, departed from Katra railway station at 8 a.m. and reached Budgam, thus making a successful trial. The work on the Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link project was recently completed and the railway authorities conducted a series of train trial runs between Katra, Riasi, Sagaldan, Sumbarkhari and Banihal railway stations. We have more from our correspondent.
The final train trial run between Katra and Budgam was conducted to check the track, tunnels, bridges, electric lights, etc. en route to Budgam. The train shugged between Katra and Budgam with prescribed speed limits, and after passing through treacherous mountains, the highest bridge, longest tunnel, and reached the Budgam railway station in Kashmir successfully. Earlier this month, Commissioner of Railway Safety, CRS, inspected the newly constructed Katra, Riasi, Sangaldan, Banihal track through trolleys and trains and submitted its detailed authorization report to the central government for opening of the newly constructed broad gauge line between Shri Mata Vaishnodevi Katra and Riasi railway stations. Most probably, the Prime Minister Narendra Modi will launch the rail service to Kashmir anytime after January 26, 2025. The 22-coach train Vande Bharat Express, which completed its maiden trial run on the Katra-Budgam railway track, is a specially designed train. It will have a heated filament which works even under snow to prevent ice or frost from accumulating on the glass. The Vande Bharat Express, which will be operated between New Delhi and Kashmir, has been designed under the Make in India initiative. This train has been designed keeping in view inclement weather, especially snowfall. The sub-zero temperatures witnessed in Kashmir have been taken into consideration while designing windshields and carrying out the plumbing work in the coaches. Silicon heating pads have been fitted inside the water tanks and bio-toilet tanks, and first of its kind plumbing work has been done on the coaches. The heating mechanism in sanitation tanks will also ensure a free flow of hot water to the coaches. The plumbing work from the water tank to dispensing areas has pipelines that are fully insulated. In addition, blowers in washroom areas have been provided in view of cold weather conditions. The train will see triple layer windshields on its driver's cabin, will automatically defrost to ensure clear visibility in harsh winters. The wiper system developed in the train will dispense hot water to keep frost away from the driver's windshield. Apart from the driver's windshield, the rest of the coaches also have a double-coated windshields. The Kashmir Valley will soon become part of a network of the Indian Railways, which transport 22 million passengers daily and carries 4.2 billion tons of freight. This is N. Gulshan Raina for Parikrama from Akashvani, Jammu.
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गुम्मा और द्रंग में नमक के पहाड़ हैं और यहां पर प्राचीन समय से ही नमक निकाला जाता रहा है. नमक का कितना महत्व है हमारे आपके खाने में और स्वाद, कोई ज्यादा नमक खाता है, कोई कम खाता है, लेकिन इसके बिना, नमक के बिना भोजन में स्वाद नहीं हो सकता. और गुम्मा नमक जो है अपने स्वाद और औषधीय गुणों के चलते पूरे देश भर में लोगों को आकर्षित करता रहा है. एक रिपोर्ट.
मंडी जिला का गुम्मा क्षेत्र इस चट्टानी नमक के कारण रियासतकालीन राजाओं के मध्य एक संघर्ष का कारण रहा है. विभिन्न रियासतों ने इस प्राकृतिक खनिज संपदा को अपने अधीन करने के लिए कई युद्ध भी लड़े. गुम्मा व द्रंग नमक की ये खदानें अधिकतर समय मंडी रियासत के अधीन ही रही हैं. आजादी के बाद इन नमक खदानों को भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया और वर्ष 1963 में इन खदानों को मैसर्स हिंदुस्तान सोल्स लिमिटेड को हस्तांतरित कर नमक का उत्पादन शुरू किया. कई वर्षों के बाद गुम्मा की पहाड़ियों में एक बड़ा भूस्खलन हुआ और यहां से नमक को निकालना मुश्किल हो गया. वर्तमान में गुम्मा में चट्टानी नमक तो नहीं निकाला जाता, लेकिन यहां से लगभग 35 किलोमीटर दूर द्रंग खदान से आज भी ये नमक निकाला जा रहा है. गुम्मा नमक रासायनिक विश्लेषणों में भी उत्तम पाया गया है. स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन समय से ही गद्दी समुदाय के लोग प्रतिवर्ष अपनी भेड़ बकरियों के साथ गुम्मा से गुजरते थे और पूरे वर्ष भर के लिए नमक यहाँ से लेकर जाते थे. इस नमक को न केवल वे स्वयं इस्तेमाल करते थे बल्कि मवेशियों को भी खिलाया जाता था, जिसका जिक्र आज भी प्रदेश की लोक कथाओं, संस्कृति व संगीत में सुनने को मिलता है. जहाँ तक गुम्मा नमक खदान की बात करें तो वहाँ पर पानी के तौर पर आज भी गुम्मा नमक उपलब्ध है. बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ हिमाचल भ्रमण पर आने वाले पर्यटक इसे बोतलों व बर्तनों में भर कर ले जाते हैं. इस तरह इस ऐतिहासिक गुम्मा नमक का स्वाद आज भी लोग चख रहे हैं. परिक्रमा के लिए शिमला से मैं राजकुमारी चंदेल.
और विशाल, अब जम्मू शिमला के बाद लेट्स गो टू बेंगलोर और बेंगलुरु. द यूनियन कैबिनेट हैड लास्ट वीक अप्रूव द थर्ड लॉन्च पैड फॉर इसरो एट सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश. मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट.
The cabinet approval for the third launch pad for ISRO in Shar at Sriharikota will augment launch capabilities. This important infrastructure will enable ISRO to launch the next generation launch vehicles and also support a standby launch pad for the second launch pad. The third launch pad will also be used for future Indian human spaceflight missions. This launch pad will support the launch vehicle Mark 3 with semi-cryogenic stage as well as scaling up configuration of new generation launch vehicles. ISRO is planning to establish Bharatiya Antariksh Station by 2035 and an Indian crewed lunar landing by 2040. These missions require a new generation of heavier launch vehicles with new propulsion systems. The third launch pad will cater to a heavier class of next generation launch vehicles. Utilizing ISRO expertise, the launch pad will be built to the specification by private industries. ISRO has targeted to install the third launch pad within 4 years. A sum of over 3,900 crore rupees will be incurred to install the third launch pad, including the associated facilities. Meanwhile, ISRO will be using the refurbished second launch pad to launch human-rated launch vehicle Mark 3 for the Gaganyaan missions. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
और बात व्हाइट ऑर्चिड फेस्टिवल की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला स्थित कर्सियांग में कल 24 जनवरी से 3 दिवसीय व्हाइट ऑर्चिड फेस्टिवल यानी कि सफेद सुनखरी महोत्सव आरंभ हुआ। क्या है ये महोत्सव, बता रहे हैं हमारे संवाददाता।
सुनखरी नामक सजावट के इस सुंदर फूल के प्रचार प्रसार हेतु कर्सियांग टूरिस्ट लॉज से पारंपरिक गाजे बाजे के साथ एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के मुख्य कार्यपाल अनित थापा ने इस महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। कर्सियांग के मल्टीवेट खेल मैदान में आयोजित इस महोत्सव में सफेद सुनखरी पुष्प के विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोग व पर्यटक अच्छी संख्या में आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में व्यापक स्तर पर इसकी खेती की जाती है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में वार्षिक रूप में करीब 700 मेट्रिक टन सुनखरी के विभिन्न प्रजाति के फूल उगाए जाते हैं, जिसमें अकेले पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ का योगदान 200 मेट्रिक टन का है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन इलाका में स्थानीय लोगों के आय संवर्धन में इस सुनखरी फूल का कितना बड़ा महत्व है। वैसे सुनखरी फूल के महत्व की बात करें तो एक एक पौधे का मूल्य करीब 1,000 रुपया है। भारत के विभिन्न शहरों तथा विदेशों में इस फूल की बहुत मांग है। नीला, आसमानी, गुलाबी, पीला आदि विविध रंगों में सुनखरी का फूल पाया जाता है, जो घरों की सजावट के लिए बेहद मनमोहक होते हैं। ऑर्किड से विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्य और सुगंध तैयार किए जाते हैं, जो उच्च मूल्यों पर बाजार में बिकते हैं। अतः ऑर्किड के प्रचार प्रसार तथा बृहद बाजार तथा पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु प्रति वर्ष दार्जिलिंग के विभिन्न स्थानों में क्रमशः ऑर्किड महोत्सव का आयोजन जाड़े के महीने में किया जाता है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कर्सियांग।
और अब बात सर्वभाषा कवि सम्मेलन की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के बहुप्रतिष्ठित और बहुचर्चित कार्यक्रम सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रसारण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर आज रात 10 बजे किया जाएगा। और जानकारी के साथ हैं दीपमाला कौशिक।
इस सर्वभाषा कवि सम्मेलन में देश के लगभग 400 कवि एक साथ एक मंच पर काव्य पाठ करेंगे। संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के प्रमुख कवियों की कविताएं सभी 22 भाषाओं में अनुदित होकर आकाशवाणी के संबंध केंद्र से प्रसारित की जाएंगी। इन कवियों का चयन संबंधित भाषा में स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज इस सर्वभाषा कवि सम्मेलन की प्रमुख विशेषता ये भी है कि पहले संस्कृत भाषा की कविता का प्रसारण किया जाता है, इसके बाद अन्य कविताएं प्रसारित होती हैं। इस प्रसारण की एक खास विशेषता है, जैसे यदि गुजराती भाषा की कविता आकाशवाणी दिल्ली से 10:40 पर हिंदी भाषा में प्रसारित हो रही होगी, तो उसी समय आकाशवाणी मुंबई से ये कविता मराठी भाषा में, कोलकाता से बांग्ला में और चेन्नई से तमिल भाषा में प्रसारित हो रही होगी। इस वर्ष हिंदी भाषा के लिए वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर धनंजय सिंह गीत विधा के लिए, डॉक्टर दिलीप मेहरा छंदमुक्त कविता के लिए, अहमद वसी उर्दू भाषा के लिए और युवा कवि डॉक्टर युवराज भट्टराई संस्कृत भाषा के कवि होंगे। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल, FM गोल्ड, आकाशवाणी यूट्यूब चैनल तथा AIR लाइव न्यूज 24/7 से इन सभी कविताओं का अनुवाद हिंदी भाषा में प्रसारित किया जाएगा।
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं क्या आज हलचल है खेल के मैदान में। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे चल रही है। बुधवार को कोलकाता में हुए पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था।
एंड टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन ओपन, विशाल, इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस विमेन सिंगल्स फाइनल मेडिसन कीज हैज वन won her maiden Grand Slam title by defeating defending champion Aryna Sabalenka in a thrilling match that ended 6-3, 2-6, 7-5. Key's victory denied Sabalenka historic third consecutive Australian Open title, and in men's singles title clash, defending champion and top seed Jannik Sinner of Italy will take on second seed German Alexander Zverev tomorrow.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि या आज के दिन जिनका जन्म हुआ था. और सबसे पहले बात करें तो साहित्यकार उपन्यासकार का नाम हमारे सामने है कृष्णा सोपती. आज इनकी पुण्यतिथि है. अपनी साफ सुथरी रचनात्मकता और अभिव्यक्ति के लिए इनको जाना जाता है. इन्होंने हिंदी की कथा भाषा को अपनी विलक्षण प्रतिभा से अप्रतिम ताजगी और स्फूर्ति प्रदान की है. कृष्णा सोपती ने 50 के दशक में ही अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया था. इनकी पहली कहानी लामा थी जो 1950 में प्रकाशित हुई थी. उपन्यासों की बात करें तो डार से बिछुरी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के जिंदगी नामा, यारों के यार और दिलो दानिश. और इनको पुरस्कारों की बात करें तो इनको सबसे जो महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला वो हिंदी अकादमी अवार्ड मिला था 2001 में, और साहित्य शिरोमणि पुरस्कार भी दिया गया 1982 में.
एंड टुडे वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू एस डी नारंग, वाज बोर्न ऑन जून 18 इन लालपुर पंजाब विच इज ब्रिटिश इंडिया नाउ, एंड ही वाज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर नोन फॉर मूवीज लाइक दिल्ली का ठग इन 1958, अनमोल मोती 1969 एंड शहनाई इन 1964. और ये सारी इतनी प्यारी मूवीज थी विशाल, मैंने सोचा क्यों ना हम अपने लिसनर्स को और अपने खुद के लिए ये एक दो गाने प्यारे प्यारे से सुन लेते हैं.
न झट को जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे. ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा.
Today we are also remembering Jemsetta Hawkins, known professionally as Etta James, who was an American singer and songwriter. Starting her career in 1954, James frequently performed in Nashville's famed R&B clubs, collectively known as Chitlin Circuit, in the 1940s, 50s and 60s. And first let's listen to this beautiful song sung by her and then a little more on her personality. She won 3 Grammy Awards for her albums and 17 Blues Music Awards. She was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1993, the Grammy Hall of Fame in 1999, and Blues Hall of Fame in 2001. And she has also received the Grammy Lifetime Achievement Award in 2003. Rolling Stone magazine ranked James number 22 on its 2008 list of the 100 greatest singers of all time. She was also ranked number 62 in its list of 100 greatest artists of all time.
और आज के दिन जन्म हुआ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जानी मानी पार्श्व गायिका. कविता कृष्णमूर्ति ने हिंदी सहित करीब दर्जन भर भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गाने गाए हैं. और 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं के गानों ने इन्हें पार्श्व गायिका के रूप में हिंदी फिल्म जगत में पहचान दिलाई. इसके बाद फिल्म मिस्टर इंडिया के लोकप्रिय गीतों ने इन्हें सुपरहिट गायिका का दर्जा दिलाया. 90 के दशक में कविता कृष्णमूर्ति हिंदी सिनेमा की अग्रणी पार्श्व गायिका बनकर उभरी. फिल्म 1942 लव स्टोरी में गाए उनके गाने आज भी पसंद किए जाते हैं. और साथ ही साथ सुभाष घई की फिल्म कर्मा में उनका गाया गीत हम हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए आज भी लोगों की जुबान पर है.
एंड टॉकिंग अबाउट द अवार्ड, शी इज द रेसिपिएंट ऑफ 4 फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड्स एंड द पद्मश्री विच शी रिसीव्ड इन 2005. एंड आपको पता है विशाल, शी इज मैरिड टू द नोटेड वायलिनिस्ट एल सुब्रमण्यम एंड रिसाइड्स इन बेंगलुरु. और यहां पर हम उनके कुछ गाने लेते हैं.
आज मेरी दुनिया है तुझ में कहीं ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है ना मिल
तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम परिक्रमा आपको जरूर पसंद आया होगा। अब समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए विशाल और रेणु को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की।
जी, एंड इफ यू वांट टू लिसन टू दिस प्रोग्राम अगेन, यू कैन लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.newsonair.gov.in, एंड अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।